ओम शांति। हम सबके बीच में आदरणीय गीता दीदी जी शांतिवन से खास आबू रोड से पधारे हैं हम सबको एक्सपीरियंस कराने के लिए। और क्या विशेष एक्सपीरियंस हम करने वाले हैं? आज आपने सुप्रीम सोल परमात्मा का भी सुना, तो इसी कड़ी से आगे बढ़ते हुए वो आपको एक्सपीरियंस कराएंगे सुप्रीम जॉय का, एक्सपीरियंसिंग सुप्रीम जॉय। तो आदरणीय गीता दीदी हम सबके बीच में बैठे हैं, हम कर्तक ध्वनि से पहले उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू। गीता दीदी के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगी। जैसे गीता दीदी का नाम है वैसा ही उनका वास्तविक जीवन भी देखा गया है। कहते हैं कर्म करते रहो और फल की इच्छा नहीं रखो। अपनी जीवन जो है, चाहे दुख सुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति जो भी परिस्थिति आती है, उसमें हमारी स्थिति एक रस हो। ये दो मूल शिक्षाएं गीता के अंदर बताई हुई हैं। तो ऐसा ही वास्तविक परिचय हमारी गीता दीदी जी का है। गीता दीदी जो है 14 इयर्स की एज में ही आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आई इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, और 72 में आपने ईश्वरीय जीवन के अंदर अपना जीवन जो है समर्पित किया है। लेकिन अपनी स्टूडेंट लाइफ में दीदी का बहुत अच्छा रहा, वो प्रथम आई गुजरात बोर्ड के अंदर, साउथ गुजरात बोर्ड के अंदर आप फर्स्ट आई हैं इसमें, और इस ईश्वरीय ज्ञान ने इतना प्रभावित किया आपको कि आपने अपना जीवन जो है समर्पित किया है। दीदी के बारे में बताना चाहेंगे कि दीदी नेशनल, जैसे इस ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा एजुकेशन फाउंडेशन के बिजनेस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, और आपने जो है ज्ञान सरोवर में 93 से लेकर के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस अकोमोडेशन में भी काफी अपनी सेवाएं दी हैं, और साथ ही साथ गुजरात में आपने बहुत सारी यहां पर सेवाएं की है, कई स्थानों पर आपने सेवाएं दी हैं गुजरात के भी। भावनगर में आप 14 साल तक लगातार सब जोन इंचार्ज के रूप में आपने सेवाएं दी हैं, और देश विदेश में आपने भ्रमण किया है। आप स्पेशल जैसे हमारी ब्रह्मा कुमारीज के गैदरिंग होती है हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स की, और साथ में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी आप बहुत उसमें सुंदर प्रभावित एक शिक्षिका हैं, एक सीनियर राजयोगा दीदी हमारे सामने हैं, और आपने कई मैनेजमेंट कोर्सेस, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्सेस, पॉजिटिव थिंकिंग, फिर लीडरशिप एटीट्यूड वगैरह, ऐसे कई आपने लेक्चर्स किए हैं। समय प्रति समय आपके लेख जो हैं वो भी पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। आपको हम आस्था चैनल पर, संस्कार चैनल पर, पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी देखते रहते हैं। तो हम सबके बीच में हमको एक्सपीरियंस कराने के लिए दीदी जी पधारे हैं। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर विषय पर आपका सेमिनार चल रहा है, जीवन में आनंद। बहुत ही मूल्यवान मानव जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है। एक मनुष्य ही है जिसमें सोचने की, समझने की और कर्म करने की योग्यता है। अन्य प्राणियों में इतना विवेक विकसित नहीं है, लेकिन मनुष्य आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी कहा जाता है। उसमें सोचने की, समझने की, कर्म करने की योग्यता है। पर क्या कारण है जो इस संसार में मनुष्य जितना दुखी होता है, उतना और प्राणी नहीं होते हैं। इंसान ही इतना गमगीन क्यों हो जाता है जो आत्महत्या कर लेता है? तो हम अपने जीवन में जैसा भी जीवन हमें प्राप्त हुआ है, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, जो भी हमारे साथी हैं, उसमें रहते हुए हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव कैसे करें? मैं समझती हूं कि उनके संबंध में अलग अलग सेशंस आपके चले हैं, व्यक्ति मिलन का आनंद उसका अनुभव हमें है। हमारे लिए शुभ सोचने वाले, हमारा कल्याण करने वाले, हमारे सहयोगी, कोई भी जब मिलता है बहुत खुशी होती है। घंटों तक मन उस मिलन के आनंद में रहता है। हमें वस्तुओं की प्राप्ति के आनंद का भी अनुभव है। कोई मनपसंद चीज ले आते हैं, हम खुश हो जाते हैं, पर ये भी हम समझते हैं कि व्यक्ति और वस्तु दोनों परिवर्तनशील हैं। आज एक व्यक्ति से मुझे बहुत प्यार है, वो मुझे बहुत सुख देता है, उसकी याद मुझे आनंद देती है, पर कल वो व्यक्ति कोई कारण से बदल गया, दूर चला गया, उनसे मेरे संबंध टूट गए या वो नष्ट हो गया। अब उसकी ही याद मुझे दुख का अनुभव कराती है, विरह का अनुभव कराती है। इस प्रकार वस्तु, कोई चीज मुझे बहुत पसंद है, उसको पाकर मैं बहुत खुश हूं, पर वो चीज टूट गई, फूट गई, कहीं गुम हो गई, किसी ने चुरा ली, अब उसकी ही याद मुझे दुखद महसूस होती है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और वस्तु, संसार में दो चीज हैं, एक प्रकृति है जिससे ये चीजें बनती हैं। संसार में जितनी भी चीज वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ, हम इन आंखों से देखते हैं, वो किससे बने हैं? मैटर से बने हैं, प्रकृति के पंच तत्वों से बने हैं। मैटर से बने हैं इसलिए हम इसे मटेरियल कहते हैं। तो एक तो ये प्रकृति है और उससे बने हुए पदार्थ और ये शरीर, और दूसरा है व्यक्ति, चैतन्य शक्ति। ये दोनों ही परिवर्तनशील है, इसलिए सदा काल के सुख आनंद नहीं दे सकते। हम अपने जीवन में क्यों अनेक लोगों से संबंध जोड़ते हैं? माँ बाप, भाई बहन, इन मूल संबंधों के अलावा भी हम अनेकानेक रिश्तों में बंधते हैं, अनेकों को मित्र बनाते हैं, क्योंकि हर आत्मा की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं को हम जानते हैं कि हमें हवा, पानी और खुराक चाहिए, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ये हमारी फिजिकल नीड्स हैं, ये हमारी मूलभूत शारीरिक आवश्यकता है, पर केवल इससे जीवन नहीं चलता है। इससे पेट का पोषण होता है, लेकिन हम केवल शरीर नहीं है। अब इस सत्य को आपने जाना है कि हम एक चैतन्य शक्ति हैं। इसलिए केवल भौतिक, सांसारिक, लौकिक, दैहिक आवश्यकताएं नहीं, हमारी कुछ सूक्ष्म आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी हैं। हमें जीवन में और भी क्या चाहिए, क्या चाहिए? हमारी और कौन सी आवश्यकता है? क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर जीवन में शांति नहीं है, हर आए दिन घर में कलह क्लेश होता है, संघर्ष घर्षण होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मन मुटाव होते हैं, तो हमें जीवन में शांति अनुभव नहीं होती। हम टेंस हो जाते हैं। हमें जीवन में शांति चाहिए। सच्चा निस्वार्थ प्यार चाहिए। अगर व्यक्ति को सच्चा निस्वार्थ स्नेह नहीं मिलता है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अनेकानेक संबंधों के बीच भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है कि मेरा अपना कोई नहीं है। अगर जीवन में खुशी नहीं, आनंद नहीं, जीवन शुष्क नीरस लगता है। आनंद और खुशी पाने के लिए इंसान ने क्या नहीं किया है? ये हमारी आंतरिक सूक्ष्म आध्यात्मिक आवश्यकता है, आत्मिक आवश्यकता है। और चूंकि आत्मा अविनाशी है, इसलिए उनको अविनाशी प्राप्तियां चाहिए। अल्पकाल की प्राप्तियां तो हम करते हैं, इंद्रियानंद कहते हैं उसे। इंद्रिय आनंद से हम कहते हैं, देखने का आनंद, सुनने का आनंद, बोलने का आनंद, स्पर्श का आनंद, ये इंद्रिय आनंद है, पर उसकी लिमिट है। व्यक्ति को फिल्म देखने में या सीरियल देखने में, कोई चीज देखने में रुचि है, आनंद है, इंटरेस्ट है, पर एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, छह घंटा, दस घंटा कितना वो देख सकेगा? और वो ज्यादा देखेगा तो कर्मेंद्रियां उस पर असर आती है, बीमारी होती है। लेकिन आत्मा को सदा काल का सुख, सदा काल का आनंद चाहिए, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। इसलिए जब तक सदा काल की प्राप्ति नहीं, उसकी खोज चलती रहती। जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति और वस्तु दोनों परिवर्तनशील है, नाशवंत है, इसलिए वो सदा काल का आनंद नहीं दे सकते। संपूर्ण प्राप्ति नहीं करा सकते। हर आत्मा, हर व्यक्ति यथाशक्ति प्राप्ति करा सकता है, पर संपूर्ण प्राप्ति नहीं करा सकते। तो एक तो अविनाशी चाहिए, सदा काल की चाहिए, और दूसरा संपूर्ण प्राप्ति चाहिए। काफी कुछ प्राप्ति कर लेने के बाद भी, कितना भी धन साधन सुविधाएं प्राप्त कर लेने के बाद भी, व्यक्ति भय और चिंता में रहता है कि ये सेफ रहे, सुरक्षित रहे, सदा काल का रहे। और पूर्ण प्राप्ति चाहिए, इसलिए और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। क्या रोग हर व्यक्ति को लगा हुआ है, और आत्मा चूंकि सत्य है, इसलिए उससे हर प्राप्ति, हर अनुभूति शुद्ध चाहिए, सत्य चाहिए। बनावटी, दिखावे की ये उनको नहीं चलता है। सच्ची प्राप्ति, शुद्ध सत्य प्राप्ति दिल को स्वीकार होती है, टच होती है। बाकी हम परख लेते हैं कि ये रियल नहीं है, ये बाह्याचार है, दिखावा है, ढोंग है, सत्यता नहीं है। तीन चीज से ही। अब ऐसी प्राप्ति कौन करा सकता है, ताकि आत्मा को सदा काल का सुख, आनंद, प्रेम, शांति अनुभव हो। और ये जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम है, वो कोई स्थूल चीजें नहीं है, ये अनुभूतियां हैं, एहसास है। ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम हम पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, बाजार से नहीं ला सकते। ये हम अपनी आंतरिक आत्मस्थ स्थिति से ही अनुभव कर सकते। इसलिए भौतिक सब प्राप्ति होते हुए भी खुशी और आनंद ना हो ये भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं है तो भी आनंद है ये भी हम देखते हैं। वास्तव में ये आत्मा की स्थिति है, आत्मा की शक्ति है, और वो स्व में स्थित होने से अनुभव होती है। कल प्रथम लेसन में आपने समझा है कि शरीर 5 तत्व से बना है और आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है। हमारी ओरिजिनालिटी, हमारे असली गुण धर्म, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति है। मैं आत्मा इन गुणों का सार हूं, स्वरूप हूं। एसेंस ऑफ नॉलेज, एसेंस ऑफ पावर, एसेंस ऑफ पीस, एसेंस ऑफ लव। इसलिए जैसे ही हम अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप में स्थित होते हैं, हमें स्वयं में ही आनंद का अनुभव होता है। इसलिए हम कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। आनंद का संबंध चैतन्यता और सत्यता से। जितना हमारा सत्य शुद्ध पवित्र स्वरूप हमें खुद के अंदर ही आनंद शक्ति का अनुभव होता है, जितनी असत्यता अपवित्रता हमें खुद में ही भय चिंता लगती है। कहते ना कि व्यक्ति गलत तरीके से उसे जो चाहिए वो प्राप्त कर ले सकता है, पर उसे खुशी नहीं होगी कभी। प्राप्त करने के बाद भी उसे खुशी नहीं होगी क्योंकि उनका कॉन्शियस कॉन्स्टेंट उसे बाइट करता है। अपनी ओरिजिनालिटी से विरुद्ध किया है इसलिए उसे प्राप्ति हो जाएगी झूठ के आधार पर खुशी नहीं होगी, उसका आनंद नहीं ले सकेगा। और जीवन में हम जो कुछ प्राप्त करते हैं अगर उसका हम आनंद ही नहीं ले पाते तो फायदा क्या है। पर चूंकि आत्मा में शक्ति नहीं है, अभी हम आत्माएं कमजोर बन गई हैं, इसलिए इसकी निशानी है कि हम जो करना हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, जो नहीं करना चाहिए वो हम बार बार करते रहते हैं। हमारे सोचने, बोलने और करने में हार्मनी नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है। इससे सिद्ध है कि आत्मा में विल पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। इसलिए योग परमात्मा से लगाने की आवश्यकता है। क्यों उस परम से जुड़ना है? हर कोई जीवन में लास्ट उस परम की ही शरण में जाता है। हर एक का अनुभव होगा जब चारों ओर से दुख मिलता है, धोखा खाते हैं, मुसीबत आ जाती है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, कोई बात समझ में नहीं आती, इंसान आखिर किसकी शरण में जाता है? ईश्वर की शरण में जाता है। क्यों? पता है, जानते हैं कि वो एक ऐसी परम शक्ति है जो हमें सदा काल के सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति दे सकते हैं। इसलिए हम उनकी शरण में जाते हैं। वो एक ऐसी सत्ता है जो सत्य है, कल्याणकारी है, सदा पावन है। इसलिए हम उसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। जो कल्याणकारी है, रहम दिल है, प्यार का सागर है, दयालु है, कृपालु है, हम उसकी महिमा करते हैं। जरूर आत्मा ने कभी ये अनुभव किया है तब तो हम ये महिमा गाते हैं। इसलिए हम उससे याद करते हैं। वो ऑलमाइटी है। आत्माएं यथाशक्ति मदद कर सकती है, परमात्मा पूर्ण शक्ति से आत्मा को मदद करते हैं। और केवल वो ही एक निराकार, जन्म मरण से न्यारा, हम आत्माओं का हर क्षण हर स्थान साथी बन सकता है, शरीरधारी नहीं बन सकता है। शरीर प्रकृति है और प्रकृति का बंधन हमें स्थल और काल के बंधन में बांध देता है। एक परमात्मा ही है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी है। हम हर क्षण हर स्थान उनके साथ का अनुभव कर सकते और वो सदा दाता है, सदा दाता है। इसलिए हम उसकी महिमा करते हैं। शांति दाता, सुख दाता, आनंद के प्रदाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता, वो दाता है, दे ही रहा है, देता ही रहता है। मनुष्यात्मा सदा दाता नहीं है, है? मनुष्य आत्मा सदा दाता है? नहीं। चाहिए चाहिए निष्काम भाव से हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए उनकी याद, उनके साथ संबंध, उनकी स्मृति का आनंद और सुख, जिसे हम परम आनंद कहते हैं, अतींद्रिय आनंद कहते हैं, आत्मा कर्मेंद्रियों से न्यारी होकर परमात्मा याद का जो आनंद अनुभव करती है उससे अतींद्रिय आनंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं। और जब हम जीवन में अपने अविनाशी शुद्ध आत्म स्वरूप का आनंद अनुभव कर लेते हैं, जिसको हम आत्मानंद स्वरूपानंद कहते हैं, और उस परमात्मा की याद का सुख महसूस करते हैं, अनुभव है कि फिर हमारी बुद्धि और नजर कहीं डूबती नहीं है, भटकती नहीं है, क्योंकि आत्मा इतनी ऊंची अनुभूति और प्राप्तियों से भर जाती है कि फिर उससे कहीं भी नजर डूबती नहीं, इच्छाएं होती नहीं। क्यों मीरा ने सब कुछ होते हुए छोड़ा? कहते ना, रानी थी, दीवानी क्यों बनी परमात्मा की? उसकी याद का सुख आनंद, कितने ना ऐसे योगी भक्त संत हम देखते हैं इतिहास में, भौतिक रूप से कुछ नहीं पर उसकी याद का आनंद जो सदा काल रहता है, वो आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आती, वो दुखी नहीं होते, उदास नहीं होते, रिएक्टिव नहीं होते। आपने कितनों के उदाहरण पढ़े होंगे, नरसिंह मेहता है, मीराबाई है, ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है, अनेक अनेक, सुरदास है, तुलसीदास है, समाज ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, पर उन्होंने कभी किसी की घृणा नहीं की, तिरस्कार नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया। क्यों? परमात्मा की याद का आनंद सुख उनकी अपनी स्थिति को भी आनंद प्रेम स्वरूप बना देती। तो जीवन में इसलिए कहते हैं कि विवेक पूर्ण आनंद हो। आज आनंद के लिए हम अनेक साधन अपनाते हैं, पर कई बार विवेक शून्य आनंद होता है। ऐसे साधन, ऐसे हरकत, ऐसी वृत्तियां, ऐसी प्रवृत्ति जिससे हमारी वृत्तियां बहक जाती हों, चरित्र भ्रष्ट हो जाते हों, आदतें खराब हो जाती हों, आत्मा गुलाम बन जाती हो, तो वो सही आनंद नहीं। एक सुअर को गंदगी में आनंद मिलता है, पर वो आनंद सही नहीं कहे। हमें उच्च शुभ बातों से आनंद लेना है। इसलिए हमारे आनंद और खुशी का सोर्स कौन सा है, वो हमें चेक करना चाहिए। परमात्मा की याद का आनंद आत्मा शक्तिशाली अंतर्मुखी कर्मेंद्रिय जीत बनती है, बहकती नहीं है। दैहिक भौतिक लौकिक सांसारिक इंद्रिय सुख बहकाते हैं, भटकाते हैं। तो हम दो सत्य को आप सभी भी जान चुके हैं जो मॉर्निंग मेडिटेशन के लेक्चर्स आपके चले हैं कि आनंद अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं। और आनंद का स्रोत वो परम शक्ति परमात्मा है। तो हम सब मिलकर स्मृति चिंतन के द्वारा, क्योंकि हमारा एहसास हमारी समझ हमारी महसूसता हमारा दृष्टिकोण ही आनंद का आधार है। एक बहुत सुंदर चीज मेरी दृष्टि से आनंद का साधन, दूसरा कहेगा ये बिल्कुल बेकार है, मुझे पसंद नहीं है। तो एक यथार्थ दृष्टिकोण सही समझ हमें अपने कार्य में भी आनंद का अनुभव कराता है, हमें अपने अस्तित्व में आनंद है, हमें उस परम की स्मृति में आनंद है। हमें आनंद के लिए कोई साधन व्यक्ति क्रिया की आवश्यकता नहीं, योग्य आत्मस्थिति की आवश्यकता है। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। अपना डायरी पर्स फाइल बैग साइड में रख दे, हाथ में गोद में लेकर ना बैठे। एक दूसरे से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठेंगे। आंखें नेचुरल खुली रहने दे। आपके सामने अनुभवी योग अभ्यासी हम बहने बैठी हैं, हम भी उस श्रेष्ठ स्मृति के आनंद में स्थित होंगे, उस सुख के अनुभव में स्थित होंगे। परमात्मा के प्यार उसकी याद के सुख और आनंद में हम स्थित होते हैं। आप भी उसी अनुभव में स्थित होने का अभ्यास करेंगे। हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन क्या चिंतन करना है मैं सजेशंस देती जाऊंगी। आपको मुख से बोलना नहीं है, लेकिन मन ही मन वो ही थॉट रिवाइज करना है, उसके अर्थ को समझना है, उस अनुभव में स्थित होना है। हर एक अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे बिल्कुल साइलेंस में। जैसा मैं कहूं ऐसे फिजिकली भी आप डायरेक्शन चेंज करेंगे और मन से उस अनुभव में स्थित रहेंगे। जीवन की मूलभूत पांच सनातन सत्य स्मृति में हम स्थित होंगे। ये श्रेष्ठ स्मृतियां ही हमारे सुख और आनंद का आधार है। पहली सत्य स्मृति स्वयं के बारे में, मैं स्वयं एक शक्ति हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, मुझे स्पष्ट है कि शरीर तत्वों से बना है, परिवर्तनशील और नाशवंत है। मैं स्वयं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। राइट साइड घूम जाइए, दूसरी सत्य स्मृति मैं उस परम सत्य परमात्मा पिता की संतान हूं। मैं साधारण मनुष्य नहीं, मैं विशेष आत्मा हूं। प्रेम के सागर शांति दाता आनंद के प्रदाता परमात्मा की मैं संतान हूँ। जैसे ही उस सदा पावन सदा दाता ऑलमाइटी पिता को याद करती हूँ, मैं निश्चिंत निर्भय सुरक्षित हो जाती हूँ। मैं आनंद की अजस्र धाराओं के बीच स्वयं को अनुभव करती हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है। राइट साइड घूम जाए, तीसरी श्रेष्ठ स्मृति इस विशाल वर्ल्ड ड्रामा में मैं आत्मा हीरो पार्ट धारी हूँ। सर्वश्रेष्ठ मनुष्यात्मा हूँ। जब मैं सोल कॉन्शियस बनती हूँ अपने वास्तविक अविनाशी आत्मस्वरूप में स्थित होती हूँ, मैं साक्षी बनकर इस वर्ल्ड ड्रामा की हर सीन को देख सकती हूँ। जीवन के हर दृश्य को जब डिटैच होकर साक्षी बनकर देखती हूँ तो मुझे हर दृश्य में आनंद आता है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि वर्ल्ड ड्रामा एक्यूरेट है, यथार्थ है। साक्षी दृष्टा बनने से जीवन के राजों को समझ सकते हैं। हम नाराज नहीं होंगे, खुशी में रह सकेंगे। राइट साइड घूम जाए, चौथी श्रेष्ठ स्मृति मेरा असली घर इस दुनिया से दूर 5 तत्वों से पार परम धाम। जहाँ अखंड लाल ज्योति ब्रह्म तत्व छाया हुआ है, मैं आत्मा उस परम धाम की निवासी हूँ। जहाँ सर्वत्र शांति है, पवित्रता है, जहाँ मैं आत्मा अनुभव के सागर में समाई हुई हूँ। निजानंद स्वरूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा। निज ज्ञान स्वरूपम मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निज प्रकाश स्वरूपम मैं आत्मा हूँ। मुझे निज आत्म स्वरूप में निज आत्म धर्म में निज धाम में आनंद है, सुख है। राइट साइड को अब मैं पांचवा श्रेष्ठ स्मृति का अभ्यास करूंगी। मैं इस विश्व में भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं प्रभु का प्रतिनिधि हूँ। जैसे परमात्मा दाता है, मैं उनका प्रतिनिधि, मैं आत्मा मास्टर दाता। मुझे सत्य विचारों से, शुभ भावनाओं से, श्रेष्ठ भावों से, रूहानी नजरों से मधुर निर्मल वाणी से और अपने सत्कर्मों से मुझे सबको सुख देना है। शांति फैलानी है, सबको आनंद से भरपूर करना है। ये अलौकिक संपदा मुझे सबको बांटनी है। बैठ जाए।
जी
स्वयं में ही आनंद है। मेरा शुद्ध चैतन्य सत्य पवित्र स्वरूप में आनंद है। मैं स्वयं में एकाग्र परम ज्योति की संतान मुझे अपने ऊपर गौरव है। जैसे ही मैं सुखदाता प्यार के सागर कल्याणकारी सदा दाता शिव पिता को याद करती हूँ। मैं आनंद से भरपूर हो जाती हूँ। मैं याद करती हूँ और उनकी सर्व शक्तियाँ मेरी साथी बन जाती है। मैं भरपूर हूँ। संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ।